आरव ओबेरॉय विला में आया हुआ था और उसने मिस्टर अर्जुन सिंह ओबेरॉय से जमीन लेने के बदले उनकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। मिस्टर ओबेरॉय को दी आरव पहली नज़र में पसंद आ गया था, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं किया। आज की रात आरव और वेद ओबेरॉय विला में ही रुकने वाले थे। आयु घर छोड़कर जा चुकी थी, इस वजह से उसका अपने ही घर में आना बैन था। फिर भी वो अपने दादा का नाम लेकर गार्ड को जैसे तैसे मनाकर पीछे के दरवाजे से घर में आ गई थी। आयु को पता था कि उसे आशी के कमरे तक कैसे पहुंचना है, और वो सबसे छुपाते छुपाते वहां पहुंच भी गई थी। आशी को लगा कि शालू फिर से आई है, तो वो चिढ़कर तेज आवाज में बोली, मॉम आपने ही कहा था कि टाइम ले लेना, अब आप वापस इतनी जल्दी कैसे आ गई? दरवाजा खोलते ही आशी ने आयु को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने जल्दी से आयु को अंदर लिया और फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आशी को देखते ही आयु के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो उसको हग करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी आशी दो कदम पीछे हट गई और अपना हाथ आगे करके बोली, बहुत गंदी बदबू आ रही है, सच में सहन नहीं हो रहा, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने, बिखरे बाल। बोलते हुए आशी की नज़र आयु के हाथों पर पड़ी। उसने जो ग्लव्स पहन रखे थे उन पर खून लगा हुआ था। उसे इस तरह देखकर आशी को उल्टी जैसा फील होने लगा। आशी मुंह बिगाड़कर बोली, तुम तो अपना पैशन कोई फॉलो करने गई थी ना, ये क्या मर्डरर की तरह खून से रंगे हाथ लेकर घूम रही हो? पुलिस ने तुम्हें देख लिया तो कातिल समझेंगे। आशी के इस तरह रिएक्ट करने पर आयु ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर बनने के लिए गई थी, कोई मॉडल बनने के लिए नहीं। जो तुम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं यहाँ कोई फैंसी सा ड्रेस पहनकर कैटवॉक करती हुई इस घर में आऊंगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन अपना इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बीच में छोड़कर आ गई। ताज़ा ताज़ा लाश मिली थी और तुम्हें नहीं पता कि पोस्टमार्टम करने में कितना मज़ा आता है। अब बस भी करो और मुझे मत बताओ, वरना मुझे उल्टी आ जाएगी, आशी ने जवाब दिया। हाँ तो फिर मुझे क्यों बुलाया, कर लेती ना उस हीरो से शादी जो जमीन के लिए तुम्हें बिना देखे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मुझे उस गोल्डिगर को देखना है। लोग खामखा लड़कियों को बदनाम करते हैं कि वो पैसों के चक्कर में किसी से भी शादी कर लेती है, अब उस गोल्डिगर के बारे में क्या कहेंगे, आयु ने गुस्से में कहा। आयु के मुंह से शादी का नाम सुनकर आशी को सब कुछ फिर से याद आ गया और उसका मुंह बन गया। वो बेड पर बैठते हुए बोली, देखा जाए तो तुम मुझसे 10 मिनट बड़ी हो और पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम थी, प्लीज़ तुम उसे शादी कर लो, पापा से आकर माफ़ी मांगोगी तो वो सब भूलकर तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दे देंगे। ओ हेलो, मुझे अपने होने वाले हस्बैंड की तरह लालची समझाए क्या, वैसे भी मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, वो इससे तो लाख गुना बेहतर है, आयु ने कहा और फिर वैसे ही बेड पर बैठ गई। आयु के पास में बैठते ही आशी तुरंत खड़ी हुई और लाचारी से कहा, देखो बहन मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ, अदरवाइज मत लेना पर थोड़ा दूर रहो, तुम्हारे अंदर से दवाइयों और फिनाइल की मिलीजुली बहुत गंदी सी बदबू आ रही है। एक बार के लिए बदबू को फिर भी इग्नोर किया जा सकता है, पर तुम्हारे कपड़ों और हाथों पर खून देखकर मेरी तो हालत खराब हो रही है। वैसे सच कहूँ तो बदबू तो मुझे भी आ रही है, पर नहाने का टाइम नहीं मिला, आयु ने अपने नाक पर हाथ रखकर कहा तो उसके नाक पर भी हल्का सा खून लग गया। तुम बहुत मैसी हो, पता नहीं कौन बेवकूफ़ लड़का है जिसे तुमसे प्यार हो गया होगा। और एक सेकंड, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा प्यार और शादीवादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुम रिलेशनशिप में कैसे आ गई, आशी ने हैरानी से पूछा। वो दोनों काफ़ी टाइम बाद ऐसे खुलकर बात कर रही थी, वरना आशी जब भी आयु को कॉल करती थी तो वो बिजी ही रहती थी। आयु ने अपने चेहरे पर ईविल स्माइल दी और उसी अंदाज में कहा, तुम्हें तो पता है मैं MBBS के लास्ट ईयर में हूँ, तो इंटर्नशिप के लिए एक हॉस्पिटल में जाना हुआ, हम जिसके अंडर काम कर रहे थे बस उसी डॉक्टर को मैंने प्रपोज कर दिया। तुमने प्रपोज कर दिया? इतना हैंडसम है क्या कि पहली नज़र में ही प्यार हो गया, आशी ने हैरानी से पूछा। हैंडसम भी है, इंटेलिजेंट भी है, और हमें मार्क्स भी वही देने वाला है। देखो वैसे मैंने मार्क्स के चक्कर में उसे प्रपोज नहीं किया, लेकिन मुझे न्यूरोसर्जन बनना है और वो भी न्यूरोसर्जन है, इसकी तैयारी मैंने पहले से ही शुरू कर दी है, सोच उसको पटा लूंगी तो फ्री में ट्यूशंस मिल जाएगी। अब तुम्हारी बहन भले ही थोड़ी बिखरी बिखरी रहती है पर दिखने में तो खूबसूरत है ना, उसने मुझे हाँ कह दिया। आयु ने अपनी प्यार और रिलेशनशिप की सारी कहानियां आशी के सामने रख दी। सारी बात जानने के बाद आशी ने अपना सिर पकड़ लिया। वो सार्केस्टिक स्माइल के साथ बोली, नीचे आए हुए उस आदमी को भला बुरा कह रही थी, वैसे देखा जाए तो तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है, वो यहाँ जमीन के लिए शादी कर रहा है तो तुमने अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए अपने सीनियर डॉक्टर को पटा लिया। ओ बहन क्या कहने तुम्हारे, वैसे बता दूं मोहाली की उस जमीन पर होटल बनाना उसका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। दो सेल्फिश इंसान मेरी ही लाइफ में आने थे जिसे प्यार या किसी चीजों से ज्यादा अपने ड्रीम की वैल्यू है। मैं तो बस ऐसे ही हूँ, आयु ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका कर कहा। आयु और आशी बातें कर रहे थे तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आशी के बाहर नहीं आने पर अर्जुन आरव को लेकर उसके कमरे तक पहुंच गए थे। आशी बेटा दरवाजा खोलो, बस 5 मिनट का टाइम चाहिए था, अर्जुन ने काफी प्यार से कहा। उनकी आवाज सुनकर आयु झट से पर्दे के पीछे छुप गई। आशी दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे पर आई, तभी मिस्टर ओबेरॉय का कोई जरूरी कॉल आ गया और वो दूसरी तरफ चले गए। आशी ने आरव को बात करते हुए सुना था, तब वो ऊपर थी और ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। जैसे ही आशी ने आरव को देखा, वो एक पल के लिए उसमें खोसी गई। उसकी ओशन ब्लू आईज एक अलग ही चार्म क्रिएट कर रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है, अच्छा हुआ तुम्हारे डैड चले गए, आरव ने कहा और आशी को साइड करके अंदर आ गया। आरव की आवाज सुनकर आशी का ध्यान टूटा। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोली, वैसे हैंडसम तो बहुत है। आशी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वेद भी वहीं पर था और आरव के पीछे पीछे वो भी अंदर आ गया था। अंदर आते कि वेद ने अपना मुंह बिगाड़ा और नाक पर हाथ रखकर कहा, छी, ये तुम्हारे कमरे में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? फिर उसने हैरानी से आरव की तरफ देखा, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था। आरव को बिल्कुल नॉर्मल देखकर वेद ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि किसी के सपने उसे इतना बदल देते हैं। एक जमीन के लिए शादी करना तक तो ठीक है, लेकिन ये इतनी गंदी बदबू तक बर्दाश्त कर रहा है। घर जाने दो, इसके कारनामे सबको बताने वाला हूँ मैं। मुझे ये स्मेल जानी पहचानी सी लग रही है, आरव ने इधर उधर देखते हुए कहा। वेद ने जवाब में कहा, जानी पहचानी तो लगेगी ही, ऐसे लग रहा है जैसे किसी हॉस्पिटल में आ गए हैं, जहाँ दवाइयों की स्मेल को छुपाने के लिए फिनाइल का पोछा लगाया गया हो। आयु पर्दे के पीछे खड़ी आरव का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, तो वही आशी इस वक्त काफी एम्बेरेसिंग फील कर रही थी। आयु की वजह से उसके कमरे में वाकई काफी गंदी बदबू आने लगी थी। रुको, मैं खिड़कियां खोल देता हूँ, सब नॉर्मल हो जाएगा, वेद ने कहा और खिड़की की तरफ बढ़ने लगा, जिस खिड़की के पीछे आयु छुपी हुई थी, जिस तरफ वो जा रहा था।
वेद को खिड़की के पास जाते देख आशी बुरी तरह घबरा गई। ऊपर से मिस्टर ओबेरॉय भी कमरे में आ चुके थे।